अरमान का सब्र का बांध टूट गया था। इस तरह से अपनी आंखों के सामने वो अपनी बीवी को किसी और के गले लगते हुए नहीं देख सकता था। आस्था को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिरकार हो क्या रहा है और ये मिस्टर अविनाश उसके साथ इस तरह का बर्ताव क्यों कर रहा है और नानीमा क्या छुपा रही है। लेकिन तभी अरमान अपनी बंदूक निकालकर अविनाश की तरफ बढ़ा। अब तो एंजल भी पूरी तरह से शॉक में थी और वहीं सभी उस वक्त वहां मौजूद थे। हालांकि एंजल गोरी से यानी आस्था से बेहद चिढ़ा करती थी, लेकिन उसने आज तक अपने चेहरे की शिकन, अपना चिड़चिड़ापन कभी भी अविनाश के सामने जाहिर नहीं किया था, क्योंकि वो जानती थी कि वो फोटो वाली लड़की अविनाश के लिए क्या मायने रखती है। लेकिन आज उस लड़की के मिल जाने पर अविनाश का इस तरह का बर्ताव देखकर एंजल भी पूरी तरह से चौंक गई थी। वहीं अरमान अब बंदूक लेकर उसकी तरफ गुस्से से बढ़ा, लेकिन इससे पहले कि वो अविनाश के ऊपर बंदूक तानता या उसे कुछ करता या कहता, तब अविनाश ने इमोशनल होते हुए कहना शुरू कर दिया, मेरी गोरी, मेरी बहन। अब जैसे ही अविनाश ने बहन लफ्ज बोला, सबकी आंखें हैरानी से चौड़ी हो गई थी। सब एक दूसरे को सवालिया नजरों से देखने लगे। वहीं एंजल को तो अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। एंजल को ऐसा लगा मानो उसे कितनी ही सारी खुशियां एकदम से मिल गई हों। अविनाश के मुंह से आस्था के लिए यानी गोरी के लिए बहन लफ्ज सुनना एंजल को बहुत ही ज्यादा एंटरटेनिंग लगा था। वहीं आस्था ने अविनाश को खुद से दूर किया और झल्लाते हुए बोली, देखिए आप कौन हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, यहाँ क्या हो रहा है। आस्था की बात सुनकर अविनाश ने उसके गालों को प्यार से छूते हुए बोला, मैं हूँ अविनाश रघुवंशी, तुम्हारा बड़ा भाई। अब तो आस्था की हालत काफी ज्यादा अजीब सी हो गई थी और ना वो हंस पा रही थी ना वो रो पा रही थी। एकदम से इतनी सारी खुशी आस्था संभाल नहीं पाती और उसकी आंखें बंद हो गईं। अरमान ने जल्दी ही आस्था को गोद में उठाया और उसे ले जाकर सीधा बेडरूम में लिटा दिया और उसके बाद अविनाश के पास वापस आकर दनादन बोलता है, ये सब क्या लगा रखा है तुमने, ऐसा कैसे कह सकते हो कि आस्था तुम्हारी बहन है। तब अविनाश ने देरी ना करते हुए जल्दी ही आस्था का जन्म सर्टिफिकेट से लेकर सारी चीजें, उसकी बचपन की सारी फोटोज सब कुछ अरमान को दिखाना शुरू कर दिया और तब अविनाश बोला, आपको मुझसे ये पूछने की कोई जरूरत नहीं है, आप इनसे भी पूछ सकते हैं, क्योंकि मेरे दादाजी ने मुझे बताया था कि जिन्हें आस्था की जान बचाने के लिए और उसे पालने के लिए दिया था, जिन्हें उन्होंने आस्था को बचपन में सौंपा था, उनकी एक बूढ़ी माँ भी है और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वही होंगे, क्योंकि बातों ही बातों में एक बार संगीता ने दादाजी से जिक्र किया था कि उनकी एक माँ है जो गाँव में रहती है। उसी का जिक्र अधिराज जी ने भी अविनाश से कर दिया था और आज जब नानी माँ ने आस्था को गोरी कहकर बुलाया तब अविनाश को उन पर शक हो गया था। वो अब तक काफी हद तक हैरान थे। कहीं ना कहीं सबको खुशी भी हो रही थी कि चलो आस्था का बछड़ा हुआ भाई उसे मिल गया। वहीं इंजन का तो दिल चाह रहा था कि वो जोरों से उछले, नाचे, कूदे और ना जाने वो क्या क्या करे, क्योंकि जिस अनजान लड़की से वो आज तक चिढ़ती हुई आई थी असल में वो अविनाश की सगी बहन थी, ये उसे आज पता चला था। कहीं ना कहीं एंजल सोच रही थी कि काश मैंने थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन कर ली होती तो शायद मुझे इतने सालों तक इंतजार नहीं करना पड़ता। वहीं दूसरी ओर आस्था की थोड़ी देर बाद आंखें खुल गई थी। उस वक्त उसके साथ कमरे में कोई नहीं था, साथ ही साथ वो चुपके से अविनाश को फोटो वगैरह सब कुछ दिखाते हुए अरमान को और बाकी सबको देख चुकी थी। आस्था इस वक्त अपने कमरे में अकेली थी, लेकिन इस वक्त वो काफी ज्यादा कश्मकश का शिकार थी, क्योंकि उसे आज ही तो उस इंसान के बारे में पता चला था जिस डॉक्टर राजवीर ने उसके परिवार की जान ली थी और आज ही उसे उसका भाई मिला है। आस्था सोचने लगी कि वो करे तो करे क्या, क्या उसे नानी माँ की बात मानकर अभी इस बात को पेंडिंग में रखना चाहिए और उसे खूनी के बारे में बाद में कुछ सोचना चाहिए। पहले जो उसे उसका भाई मिला है उसके साथ कुछ पल उसे खुशी से जीने चाहिए। साथ ही इन सब में वो रौनक को नहीं भूल सकती थी, क्योंकि रौनक के साथ एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था। रौनक को इस डिप्रेशन से बाहर निकालने के लिए आस्था ने डिसीजन लिया कि वो अब रौनक को लेकर गांव जाएगी और जब तक रौनक का मूड अच्छे से ठीक नहीं हो जाता और पहले वाली रौनक, हंसी खेलती चहकती हुई रौनक उन्हें वापस नहीं मिल जाती, तब तक अब वो चैन से नहीं बैठेगी और गाँव से वापस आने के बाद वो अपने दोषी को सजा भी देगी। वेल, आस्था की आंखें भर आ रही थी। उसे पहली बार उसका कोई अपना मिला था जो कि उसका अपना सगा था, जिससे उसका खून का रिश्ता था। आस्था को हमेशा एक भाई की कमी महसूस होती थी और आज वो कमी पूरी हो गई। आस्था की खुशी का आज कोई ठिकाना नहीं था, लेकिन साथ ही आज उसे अनजाने में अपना दुश्मन भी दिखाई दिया, तो इसीलिए आस्था खुश भी थी, साथ ही साथ एक तरफ वो नफरत की आग में तिलमिला भी रही थी। आस्था को अब जैसे ही होश आया वो थोड़ा सा सोचने के बाद उठकर बैठी और धीरे धीरे वो नीचे जाने लगी। और अब आस्था इस बार अपने साथ में वो लॉकेट लेकर जाती है। अब जैसे ही अविनाश ने वो लॉकेट आस्था के हाथों में देखा तो उसकी आंखें नम हो गई, क्योंकि एक बार आस्था कन्फर्मेशन करना चाहती थी कि क्या वाकई अविनाश उसका भाई है या नहीं। अगर वो उसका भाई है तो वो इस लॉकेट को जरूर पहचानता होगा। इसीलिए आस्था उस लॉकेट को लेकर जब नीचे आई और अविनाश के सामने उसने वो लॉकेट दिखा दिया तो अविनाश की आंखें नम हो उठी थी और उसने उस लॉकेट को चूम लिया था और आस्था को गले से लगाकर बोला, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि मेरी बहन के साथ मुझे हमारा ये खानदानी लॉकेट भी मिल जाएगा। तुम जानती हो, इस लॉकेट के सहारे से ही मैं तुम तक पहुंचा हूं। अब जैसे ही अविनाश ने ये कहा, अब तो शक की कोई गुंजाइश नहीं थी और आस्था ने भी अब आगे बढ़कर अविनाश को गले से लगा लिया और रोते हुए बोली, हमें यकीन नहीं हो रहा है कि हमें हमारा कोई अपना सगा रिश्ता भी मिल सकता है। वहीं अरमान पूरी तरह से कंफ्यूज था। सभी लोग आश्चर्यचकित हो रहे थे, लेकिन फिलहाल सभी आस्था के लिए बहुत खुश थे। वेल, जल्दी ही हंसी खुशी माहौल में एक साथ खाना खाया गया, लेकिन इस बीच सबका मन, सबके दिल उदास थे, सिर्फ और सिर्फ रौनक की वजह से। रौनक सबके साथ शामिल नहीं हुई थी। वहीं आहान ने डिसाइड किया कि उसे जाकर एक बार रौनक से मिलना चाहिए। उसने एक नज़र रश्मि की ओर देखा, क्योंकि रौनक से मिलने से पहले वो रश्मि की परमिशन लेना चाहता था। कहीं रश्मि को ये ना लगे कि आहान रौनक को टॉर्चर कर रहा है या किसी तरह से उसे परेशान कर रहा है। तब रश्मि ने भी आहान की बात सुनकर उसे रौनक से मिलने की इजाज़त दे दी थी। कहीं ना कहीं रश्मि भी चाहती थी कि आहान रौनक को इस बात का एहसास कराए, जो कुछ भी हुआ उसमें उन दोनों की ही कोई गलती नहीं थी। वेल, जल्दी ही आहान खाने की थाली हाथ में लिए रौनक के कमरे में मौजूद था। अब रौनक, जो कि उस वक्त बेड पर लेटी हुई थी, उसने अपनी बाजू को अपनी आंखों पर रख रखा था। वेल, आहान ने रौनक को गौर से इस तरह से लेटा हुआ देखकर खुद के इमोशंस को कंट्रोल करते हुए आवाज लगा दी, हेलो मिस हवा हवाई, अब खाना खा लो। क्या इसी तरह से सोती रहोगी? क्या खाना नहीं खाओगी? क्या? आहान की आवाज सुनकर रौनक गुस्से से उठकर बैठ गई थी और उसकी ओर उंगली दिखाते हुए बोली, तुम अपनी हद में रहो, ज्यादा फ्री होने की कोशिश मत करो, समझे तुम? मैं खाना खाऊं या ना खाऊं, इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं होना चाहिए। जाओ यहां से, मुझे अब तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी है। अब जैसे ही रौनक ये कहा,
आहान का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच चुका था। उसे इस बात का गिल्ट था कि उसने जो कुछ किया वो ठीक नहीं था, लेकिन उस वक्त वो करता भी क्या? रौनक की जान बचाने के लिए कोई और रास्ता भी तो नहीं था। तब आहान ने थाली बेड पर एक साइड पर रखी और खुद रौनक के पास बैठ गया और उसको देखकर सीरियस आवाज में बोला, क्या हो गया है? हाँ, क्यों इतनी ज्यादा चिढ़ रही हो? भूल क्यों नहीं जाती हो वो सब कुछ? मैं जानता हूँ जो कुछ भी हुआ वो ठीक नहीं था, लेकिन ये बात तुम भी जानती हो और मैं भी जानता हूँ कि इसमें हम दोनों की ही कोई गलती नहीं थी। जो कुछ भी हुआ वो हालातों ने करवाया था। मुझे लगता है कि तुम्हें इस बात को अब एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। और अगर तुम्हें ये लग रहा है कि तुम्हारी शादी से पहले तुम्हारे साथ ये सब कुछ हो गया है, तो तुम क्यों फिक्र करती हो? मैं हूं ना, मैं तुमसे शादी करूंगा। हाँ, ये बात सच है कि मैं तुमसे थोड़ा सा डरता भी हूँ, क्योंकि जब देखो तुम मुझ पर हाथ उठा देती हो। लेकिन तुमसे शादी करके मेरा एक फायदा हो जाएगा। जब मैं तुम्हारा पति परमेश्वर बन जाऊंगा, तो तुम मुझ पर हाथ भी नहीं उठा पाओगी और मुझे मारोगी भी नहीं। अब जैसे ही आहान ने बच्चों जैसी शक्ल बनाकर रौनक से ये सब कुछ कहा, रौनक के तो सर में दर्द होने लगा था।